enter. India is
sir, India is third, China is number two, India is third and Russia is fourth.
अब मसला ये है कि ये हकीकत है कि उस खत्ते को और जिसके पास भी ताकत होती है वो कभी अपनी ताकत पीसफुली अनफॉर्चुनेटली लोग छोड़ते नहीं है. तो ये बड़े डिस्टर्बिंग टाइम्स हैं और उस खत्ते को अनफॉर्चुनेटली जहां पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, रशिया है, हम तकरीबन स्मैक उसके सबके बाजू में बैठे.
हम सैंडविच हैं सर, हम सैंडविच हैं.
हाँ जी, अफगानिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह है जिसके थ्रू ईरान, ईरान भी एक आपको पता है कि वेस्ट की एंटी वेस्ट में है. सो हम जब तक वो इलाका डिस्टेबलाइज रहता है तो चाइना भी कंट्रोल में रहता है, रूस भी कंट्रोल में रहता है, ट्रेड नहीं हो सकती, रास्ते नहीं खुलते. और मैं नहीं मानता कि अमेरिका बहादुर इतने बच्चे थे कि उनको नहीं पता था कि हम जो टना टन मतलब हजार हर टन असला छोड़ के, सोफिस्टिकेटेड असला छोड़ के जा रहे हैं, तो ये चार दिन में तालिबान के हाथ में होगा. आई डोंट थिंक कि जी उनको ये पता नहीं था. लेकिन एक खत्ते में डिस्टेबलाइजेशन जाहिर है सूट करती है.
या उनको मालूम था कि ये असला दहशतगर्दों के हाथ में जाएगा. टाइम की शॉर्टेज हुई. मैं इसी टॉपिक पे आपसे दोबारा जरूर आपका फीडबैक लेना चाहूंगी. और पाकिस्तान जिस सूरत हाल में से गुजर रहा है, आज अमेरिका ने 10 मिलियन की ग्रांट जो पाकिस्तान को दिया उसमें लिखा है चाइना इज पास्ट एंड अमेरिका इज फ्यूचर. लो जी, दुनिया में अगली उभरती हुई ताकत जो पावर शिफ्ट है वो इज गोइंग टू चाइना. एंड यू नो एवरीबॉडी इज लुकिंग एट इट. इसको कन्फेस किया था जनाब बाइडन साहब ने भी कन्फेस किया था. और एड्डा बेवकूफ है साड़ी हुकूमत होएगी, एड्डी बेवकूफ कि जो टाइम आया साडे गवांडी दे ताकतवर होण दा, द फर्स्ट वर्ल्ड पावर बनण दा, ते हुण असीं तुर पवांगे अमरीका वल. कर लो गल.
और एक $10 लाख के लिए सिर्फ या $1 करोड़ के लिए, तो वही मैं कह रहा हूं कि हमें जरा संजीदगी से चीजों को सोचना पड़ेगा. अब ये देखिए, जब इराक के साथ कुछ हुआ या सीरिया के साथ कुछ हुआ या अफगानिस्तान में कुछ हुआ, तो अफगानिस्तान जब उसका सत्यानाश किया गया लेटेस्ट, तो कौन साहब थे वहां पे? कारजाई साहब थे वहां पे. कारजाई साहब कौन थे? वो थे जो अमेरिका की फर्क कंपनियों
में पे काम कर रहे
इन्वॉल्व थे और अफगानिस्तान को प्ले किया गया. उनके बीच में जो डिविजन्स थी, नॉर्दर्न अलायंस मतलब जो नॉन पश्तो स्पीकिंग थे और पश्तो स्पीकिंग थे, उनको खेला गया बाहर के लोगों ने. इराक में आप देख लें, इराक में जब सद्दाम को गिराया गया तो जो लोग सद्दाम की जगह आए हैं, जिन्होंने फिर सब कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनियों को दिए, वो कौन थे? वो अमेरिका से ही उठ के गए थे. वो थे इराकी लेकिन वो अमेरिका में बैठे. सो
सर, इजिप्ट में मर्सी आया. मर्सी वो नहीं, क्या है वो सीसी हाँ सीसी वो आया. वो भी तो अमरीका नवाजी है ना, इजिप्ट का जो है.
तो देखिए, तो जब हम अगर ये कहते हैं कि जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, तो क्या वहां पे डिस्टेबलाइजेशन की एक कोशिश है? मैं कतन ये नहीं कहता कि हम सबसे पहले तो आप बेवकूफ खुद होते हैं ना. अगर आपका आपके घर में आपस में ही स्ट्रेंथ नहीं है, आप फेयर नहीं है, आपने अपने मुल्क को ही आगे चलाने की खुद ही कभी कोशिश नहीं की, तो जाहिर है आप दूसरों के हाथों में खेलेंगे तो सही. लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बाहर का एक इंटरेस्ट नहीं है आपको डिस्टेबलाइज करने का. और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है.
बहुत शुक्रिया सर.
ना भूलिए कि आप एक न्यूक्लियर पावर हैं.
बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान और दुनिया के ममालिक जो IMF के कर्जों तले दबते जा रहे हैं, मैं अपने तमाम लिसनर्स को बताना चाहती हूं. आपको पता है कि अफगानिस्तान के पास कोई IMF का कर्जा नहीं है. अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं. दे आर डूइंग ग्रेट. बहुत शुक्रिया जनाब आशिर अजीम साहब. आई लुक फॉरवर्ड इंशाल्लाह अगले मंडे को फिर आपसे बात होगी. उदो तक से सर जून जुलाई अगस्त चढ़ गया होगा
जी.
बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का. बहुत शुक्रिया. अब आजी भाई हासा आ रहा है, मैनू नहीं पता कि गलते हासा आ रहा है. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच आशिर अजीम साहब. और मैं आशिर अजीम साहब से बात करने का मकसद ये है कि सर हैड बीन टू ऑल दीज पोजिशंस, बेशुमार लोगों के बैचमेट हैं, और जो इतने बैचमेट्स होते हैं दे सिट डाउन टुगेदर, दे टॉक, दे शेयर. اور اسی کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. اجازت دیجیے گا, خبروں کے لیے تیار ہیں, شازیہ صاحبہ از ڈیفینیٹلی ریڈی. اگر میں اگلے ایک منٹ اور رہی تو شی از گونا شوٹ می ڈاؤن. تو گیٹ ریڈی ٹو ویلکم عامر احمد اینڈ شازیہ ملک.
یو آر لسننگ ٹو ڈبلیو ٹی او آر 770 AM جنگس ٹاؤن ٹورانٹو.
اپنی کمیونٹی دا سب تو وڈا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجیے سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائس تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج.
142 کینیڈی روڈ, برامٹن, 9058747471.
کیا آپ کے گھر اور آٹو انشورنس کی رینول ہو رہی ہے؟ کیا آپ درست انشورنس کوریج کے لیے اچھی قیمت کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آپ کو آل اسٹے ایجنٹ ایجنسی کے راجہ مدثر کو 6472903773 پر کال کرنی چاہیے. آج ہی کال کریں اور آپ دو کاروں اور ایک گھر کی انشورنس کراتے وقت تقریباً $1,775 کی بچت کر سکتے ہیں. راجہ مدثر 6472903773 آل اسٹیٹ کے ساتھ آپ محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اپلائی.
10 دن ہو گئے تینوں سنیہا لائی نوں, پر تو اگنور ہی کر رہے ہیں. ہونا فون اگنور ہو جائے گا, گولیاں اگنور نہیں ہونی. آپ دا تے آپ دے پروار دا دھیان رکھی, پھر نہ کہیں بھی دسیا نہیں.
جسٹن ٹروڈو دی سافٹ آن کرائم پالیسیز دی وجہ نال ایکسٹارشن رائز تے ہے. لبرلز نے ایکسٹارشن تے پینلٹیز وی کٹا دتیاں ہن. اس دوران پیئر پولیف ایکسٹارشن دے اگینسٹ بل لے کے آئے سن, اتے جسٹن ٹروڈو تے جگمیت سنگھ نے اس دے خلاف ووٹ کیتی. ہن صرف کامن سینس کنزرویٹیوز ہی کینیڈا دا ماحول ٹھیک کر سکدے نے. براٹ یو بائی پیئر پولیف اینڈ کینیڈاز کنزرویٹیو.
ٹرک کا گھومتا پہیہ کینیڈا کی معیشت کی ترقی کا ضامن. آپ کا ٹرک سڑکوں پر راج کرے اور کینیڈا کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہے. ٹرک مینول یا پھر آٹومیٹک, ٹرک کی بہترین سروس کے لیے کوئک ٹرک یو تھرو آؤٹ انٹیریو. نو اپوائنٹمنٹ نیڈیڈ. ڈرائیو تھرو فیسلٹی, ون اسٹاپ شاپ. اب تیسری لوکیشن ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401 ان نیپنی. کوئک ٹرک یو 5196220660. quicktruckcube.com.
ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੜਕਾਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਦੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਦਾ ਨਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ. ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ. ਸਾਰੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ $2.6 million ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਡਰਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ $19.6 million ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ. ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜਿਟ ਕਰੋ brampton.ca/engage.
ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ. ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ $60,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ $12,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $60,000 ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਓਨਟੈਰੀਓ, ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ BC ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 647-769-0241, 647-769-0241.
کیا آپ یا آپ کی فیملی ڈیتھ, ڈسبلٹی یا کریٹیکل ایلنس جیسی ناگہانی صورتحال کے لیے تیار ہے؟ اگر نہیں تو سن لائف کی پردیپ جی کا نام یاد رکھیے گا, 416-894-5872.
جی ہاں, صلاح مشورے اور کسی بھی پالیسی کے ریویو میں پردیپ سنگھ آپ کی پوری مدد کروں گا.
ٹرسٹ وردی آنےسٹ چارٹرڈ لائف انڈر رائٹر اینڈ کینیڈین ہیلتھ اسپیشلسٹ مسٹر پردیپ فرام سن لائف. 416-894-5872.
اور ہر ٹیوزڈے کو میرے ٹاک شو میں ضرور شامل ہوں.
ارے خیریت تو ہے, سارا سامان بکھرا پڑا ہے, کہاں کی تیاری ہے؟
ہماری پوری فیملی دوسرے شہر موو ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کس طرح سے یہ موونگ ہوگی.
آپ پریشان نہ ہو, آپ کی موونگ کا صرف ایک ہی حل ہے, 786 موونگ پلس.
اچھا وہ کیسے؟
786 موونگ پلس والے اپارٹمنٹ, ہاؤس, آفس, اسٹوریج اور کمرشل موونگ میں اسپیشلائز کرتے ہیں. موونگ اینڈ ڈیلیوری, پیکنگ اینڈ ان پیکنگ, لوکل اینڈ لانگ ڈسٹینس, 24 آور سروس, 7 ڈیز ا ویک. आवरली एंड फ्लैट रेट।
आपने तो हमारी मूविंग ही आसान कर दी। फौरन 786 मूविंग प्लस का नंबर दें।
जी जी बिल्कुल, 786 प्लस मूविंग के अमीन को आज ही कॉल कीजिए 416-786-6000 416-786-6000।
विलेज टेस्ट पूरे ऑन्टेरियो का सबसे बड़ा हलाल सुपर रेस्टोरेंट है। कॉन्टिनेंटल चाइनीज बारबेक्यूज ट्राई करना चाहते हैं, कढ़ाई आइटम्स हैं एंड स्वीट्स एंड फ्रूट्स में पे इंतहा वैरायटी है। बेहतरीन फीस्ट एंजॉय कीजिए विलेज टेस्ट पे। आफ्टर मिसिसागा दे आर इन ओकविल एज वेल। विलेज टेस्ट 9052323663 विलेज टेस्ट। भाई खवातीन को तो जेवरात बहुत अच्छे लगते हैं। चूड़ियाँ ले लो, कड़े ले लो, चेन्स ले लो, स्टोन ज्वेलरीज, रूबी ज्वेलर्स का नाम याद रखना। शादी ब्याह है या आम कोई छोटा बर्थडे पार्टी आप या किसी को गिफ्ट देने के लिए, यू मस्ट विजिट रूबी ज्वेलर्स। गोल्ड का ट्रेड है या फिर रिपेयर है, रूबी ज्वेलर्स 7086 एयरपोर्ट रोड 9056776888।
वेलकम बैक तमाम सामीन को जो 770 AM डायल पर सुन रहे हैं। प्रोग्राम साज़ो आवाज़ में खुश आमदीद, मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद। जनाब सिलसिला जो है वो न्यूज़ का शुरू करेंगे अभी कुछ ही देर में। मैं बस सोच रहा हूं थोड़ा सा कुछ खबरें मैं आपको पहले दे दूं और उसके बाद, क्योंकि आज उनका प्रेशर कुकर कुछ फट गया है। हाँ हाँ, क्योंकि प्रेशर कुकर नहीं खराब हो जाता कभी, कुछ वो जो है ना दवाई वगैरह उसमें कुछ वो मेडिसिन वो जो डालती है ना इन्ग्रीडियंट्स, वो आज घर भूल के आ गई। सोचें आप कैसी न्यूज होंगी आज की, मजेदार होंगी लेकिन कुछ कच्ची पक्की होंगी। मैं उनको प्रोग्राम में शामिल कर लेता हूं। आज सुबह से परेशान है, पता नहीं क्यों परेशान है। ये आप खुद ही उनसे अभी आते हैं, लेते हैं लाइन पे, उनसे पूछते हैं कि जनाब ये सुबह से माजरा क्या है और ये ऐसी क्या चीज जो है वो जिंदगी में कमी हो गई आज जिसकी वजह से जो है वो हमारी जिंदगी अजाब हुई है। चले जनाब सबसे पहले शाजिया मलिक साहिबा को खुश आमदीद कह लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं?
वालेकुम सलाम, हम तो वैसे ही हैं।
नहीं आज आप वैसी नहीं लग रही हैं, कुछ तो गड़बड़ है।
इसलिए कि आज मेरा खाना भी
शुक्र है,
आज मेरा खाना भी घर पे रहे। वो जो पानी में पीती रहती है ना सारा दिन, जो पीले रंग का आप देखते हैं जिसमें अफ्यून मैंने डाली होती है, वो नशे वाला पानी भी आज
वो भी घर। तभी मैं बोलूं आज कुछ जो है ना गड़बड़ है,
दिमागी संतुलन काम नहीं कर रहा।
सुबह से मुझे लग रहा है कि कुछ है।
हाँ, और ऊपर से ये जो कुर्सी है ना जिसपे अरफा बाजी बैठी थी, माशाल्लाह से इतनी मोटी हो गई है, इतना वेट डाल दिया कि कुर्सी बिल्कुल टेढ़ी हो गई है। तो आप ये देखो जरा ये कैसे ऐसे ऐसे हिल रही है। अब इस
अब आप ये देखिए
आप काम करेगा,
आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन जो आप ये बताने की कोशिश कर रही है ना कि आप पतली हो गई हैं, लेकिन ये लोग नहीं बाय कर रहे हैं, नहीं बाय कर पा रहे हैं। उन लोगों को पता है
कि कौन मोटा है।
हाँ, मतलब ये आपने जो बताया ना इस वक्त,
क्या
देखिए जर्नलिस्ट है ना, स्टोरी बनाई फौरन बैठते ही कुर्सी पे, वो लोग ये कुर्सी नीचे थी तो अब स्टोरी बना ली क्योंकि भारी बंदा बैठा था इसलिए नीचे थी।
हाँ।
भाई लेवर होता है कुर्सी में, इसको ऊपर नीचे किया जा
सकता। अच्छा, ऊपर नीचे किया जा सकता है, सुन लेना भी कर दिया।
नहीं फिर अब मसला बताऊं क्या हो गया आपके साथ, आपने गलत बंदे से पंगा ले लिया।
अच्छा,
ये चंदा बैटरी सेल वाला आदमी है। अब आप जो है वो 3.97 है।
अच्छा
ठीक हो गया। अब जो अरफा आप गई वो आपसे माशाल्लाह हाइट ज्यादा, तो उन्होंने उस हिसाब से इसको थोड़ी नीचे रखी हुई ताकि कैमरे के लेवल में आ जाए। अब आप पावर, क्योंकि आप उसमें बैठे तो ऐसा लग रहा है गर्दन ही नजर आ रही है सिर्फ टीवी पे।
अच्छा,
तो उसके लिए आपको ऊपर करना पड़ेगा।
जैसे अगर आपका नीचे हो तो आपकी तो खाली टिन नजर आ रही है।
देखो अच्छा, यहाँ भी आपको सुनने को मिल जाएगी। देखें चांद, चांद बादल में के पीछे हो या बादल के आगे हो, चांद
अच्छा,
चांद होता है।
अच्छा अच्छा अच्छा,
उसको किसी कहीं वो कहते हैं चांद छुपा बादल में। बस
ठीक है, तो वो जो आपकी मेरे टेंशन ना लो, गाना लगवाया था ना।
हाँ, बिल्कुल ना लो पंगा, गलत उल्टी पड़ जाएगी क्योंकि मैंने आज बॉर्नविटा पिया।
ओह आज फिर तुमसे बाहर मिलना पड़ेगा जरा।
देखो ये वाली धमकी नहीं देना, वो आपके खांसा आ जाए माड़ा तुम बाहर, हम तुम्हारे स्टूडियो आ रहे हैं, हम तुम्हारे स्टूडियो जो आपके 1 मिलियन एक फैन है ना, 1 मिलियन एक, वो धमकियां बहुत देते हैं
यार कसम से। वो इंस्टाग्राम पे वो डाली क्रिकेटर की तस्वीरें डाली है यार, उसमें भी 10 लाइक
लाइक बस।
अब उस्मान खाजा के साथ तस्वीर है, आप सोचो जरा कितने को शर्म की बात है, उसमें भी 10 लाइक्स हैं यार। व्हाट इज
उस्मान खाजा की बेइज्जती हो गई
उसके साथ है।
ये कुछ गड़बड़ है, चुप रहे,
ये
मुझे लग रहा है किसी ने ना हाईजैक किया हुआ।
हाँ
लाइक्स बढ़ने ही नहीं देता,
बढ़ने ही नहीं देता ये 10 लाइक्स। मतलब इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टार है, क्रिकेटर है, इतना बड़ा है जी, तो फिर भी 10 लाइक्स है। व्हाट इज दिस?
नहीं इस पे कुछ जो है ना वो
हाँ,
एक कमेटी बैठाई
हाँ, अपने चाचा जी के साथ तस्वीर हमने खिंचाई हाँ, इफ्तिखार के साथ
दो,
फिर
दो लाइक
4-5 लाइक
ये कुछ गड़बड़ है,
ये गड़बड़ है ना।
अच्छा हाँ? हमारे तो अभी कहते हैं ना कि अभी तो
टेंट दिखाई
है, शक्ल दिखाई नहीं अभी,
वही तो कह रही
हूँ 10,000 व्यूज है,
टेंट दिखाई है तो 10,000 व्यूज है,
यही फर्क है। समझ आई पावर ऑफ टेंट, होता है पावर ऑफ कॉमन मैन,
यस
ये पावर ऑफ चांद है,
कॉमन ऑफ पावर मैन।
वैसे आज मैंने बॉर्न वीटा पिया है।
अच्छा अच्छा इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कॉमन ऑफ पावर मैन।
मुझे भी जाके वो ओलंपिक्स में जो है मेडल लेके आना है।
अच्छा भागना है
वेट लिफ्टिंग?
अच्छा नहीं नहीं वेट लिफ्टिंग ना करना, कद और छोटा हो जाएगा, बिल्कुल जमीन के अंदर चले जाओगे वेट उठाया तो।
स्विमिंग कर लेता हूँ।
नहीं वो भाग लो तुम,
25वें नंबर पे आया, 25 लोगों में 25वें नंबर पे आया, 24 तो आई जाता,
तुम 24 तो कर ही लेते,
24 तो कर लेता है यार,
कर लेता।
25 लोग हैं उसमें 25वां नंबर हमारा
है।
हाँ
मतलब है कि गर्म की बात है ऐसे आमिर,
अल्लाह
बड़ा
आपकी वजह से हो रहा है सब।
अच्छा दुनिया में क्यों हो रहे
हैं वो, क्यों आप सारा बजट खा जाती है
लोगों वास्ते, रोटी नहीं,
रोटी नहीं है ना, तुम खा जाते हो, डबल खाते हो, डबल शिफ्ट लगाते हो।
आहो आहो इसी वास्ते पाकिस्तान दे विच अनाज दी थी कमी हो गई है,
गुर्बत है,
गुर्बत है। हालांकि मुझे तो पाकिस्तान से निकले हुए कितना अरसा हो गया, अभी भी गुर्बत चल रही है, यानी इतना अगले 10 साल का मैंने अनाज खा लिया था,
बहुत खाया।
ओह
फर्क बताऊं कितना था, आप जिस टाइम पे जिस दौरान नहीं आप वो फास्टिंग कर रही थी जुमरात को और मंडे को, यकीन करो मुझे मनाज ने बोला आमिर क्या हो गया, मैंने क्यों कहती यार जो राशन मैं 15 दिन का लाती थी वो पूरा महीना चल रहा है।
अच्छा
मैं कह सिर्फ 2 दिन करती है वो फास्टिंग बस,
हाँ
इतना फर्क है सिर्फ 2 दिन से, 10 साल में कितना हो गया।
ओ यस इसीलिए
2 दिन आपकी फास्टिंग से
इकॉनमी बैठ गई है,
इकॉनमी बैठा दिया आपने, आपने बहुत सो को बैठा दिया,
उठने के काबिल नहीं जोड़ा।
नहीं वो तो बेचारे एक तो
कुछ तो बिल्कुल ही उठ गए,
कुछ तो उठ ही गए, ये ना करें देखे छोटे छोटे। अच्छा लोग ना छोटे बच्चों के साथ भी प्रोग्राम देखें,
अच्छा अच्छा
उनको
तो इतना डराना नहीं है,
उनको इतना डराएं और एहतियात करा करें क्योंकि फैमिली शो है, लोग गाड़ियों में जा रहे होते हैं, बीवी बच्चों के साथ घूम रहे हैं, बाहर वेदर बहुत अच्छा है, और आप जो है उनको डराने की ऐसी बातें करेंगे यार मैं बैठ के मार दूंगी, मतलब ऐसा ना करें ना, छोटे बच्चे बेचारे डर जाएंगे, वो गब्बरों की कहानी सुनाती थी कल को आपकी देखो ना करो वरना शाजी जी को बुला लूंगी न्यूज सुनाने के लिए।
तो बच्चों को इतना नहीं डराना,
करें लोग टीवी देखते हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं,
चलो ठीक,
और डिसरिस्पेक्ट मतलब उनको अच्छा, बच्चों का ख्याल करना होता है,
अच्छा,
किसी की एक ही औलाद होती है, किसी की 2 औलादें होती है, तो अच्छा ही लगता ना कि आप उनके ऊपर बैठ जाएंगे।
अच्छा जी अच्छा अच्छा इससे पहले जी कनाडा की भी इकोनॉमी बैठ जाए हम आपको कुछ खबरें सुनाते हैं, ठीक है जी। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय डॉक्टर फियाज कुरैशी, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और इनके 3 क्लिनिक्स हैं जी, आप इनके पास जा सकते हैं। अगर मिसिसागा में जाना है तो इसका नंबर है 9052325678, और अगर आपको स्कॉर्ब्रो में जाना है तो 4167579999 है। बड़ी जबरदस्त आपको डेंटिस्ट्री की देते हैं सर्विसेज, तो इनके पास जरूर आप जाएं। और जनाब चांदनी विक्टोरिया बैंकवेट हॉल 1400+2.5 आपको पता ही है, बड़े दफा हम बता चुके हैं, 32-room लग्जरी होटल है ये, यहां पे बड़ी जबरदस्त आप अपने जो हैं वो लॉज गैदरिंग्स कर सकते हैं, स्मॉल इवेंट्स कर सकते हैं, वेडिंग्स कर सकते हैं, तो अगर आपको इनके साथ अपना इवेंट करना है तो आप इनको कॉल कर लें जी एट 6479653823। और जनाब साढ़े राजा ते बादशाह जी, राजा भी हैं ते बादशाह भी हैं जी, वो कहते हैं और आपको भी मैं राजा बादशाह बना दूंगा अगर आप मेरे लिए कॉल करेंगे तो ये ऑल स्टेट में होते हैं और आपको बड़ी जबरदस्त होम एंड ऑटो इंश्योरेंस देते हैं, तो आप इनको कॉल करें जी एट 6472903773 पे, ठीक है जनाब। ओके जी, अब हम आपको सुनाते हैं खबरें आज जरा ज्यादा गर्म, तो अगर आपको कोई लस्सी वसी का ग्लास अपने पास रखना है क्योंकि गर्मी भी बड़ी ज्यादा है तो आप रख सकते हैं, ले आए जल्दी से भाग के और फिर आप जो है हमारी ये गर्मा गर्म खबरें सुन सकते हैं। सबसे पहले तो जनाब कनेडा के अंदर जो 2 राइडिंग्स हैं, एक क्यूबेक की और एक मैनिटोबा की, उसमें होने वाले हैं बाय इलेक्शंस। और ट्रूडो साहब ने आज अनाउंस कर दिया है कि यहां पे बाय इलेक्शंस होंगे सितंबर 16 को। अच्छा, क्यूबेक के अंदर जो लिबरल पार्टी है वो सोचती है कि ये जो एरिया है लसैल एमरेट का, ये इसको एनवर्डन, इसको ये जो है अपने पास रखना चाहते हैं। ये एरिया जो था, इससे जो फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर थे डेविड लमैटी, वो थे यहां से, लेकिन उन्होंने फिर रिजाइन कर दिया था। सिंस 2013 जब से ये इलाका या ये राइडिंग जो है क्रिएट हुई है, लिबरल्स जो है यहां से विन करते आ रहे हैं, क्योंकि 2015 का जो पहला यहां से इलेक्शन लड़ा था उस वक्त से ये पावर में थे। मॉन्ट्रियल सिटी के जो काउंसलर हैं लॉरा पेलेस्टीनी, वो अब लिबरल कैंडिडेट हैं यहां से। और इसके ऊपर हालांकि काफी एतराज आया था कि बाकी जो तीन कैंडिडेट्स थे वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, लेकिन ट्रूडो साहब ने इनको हैंड पिक किया था। कंजर्वेटिव जो यहां से पिक है वो है लुई ललैंटी और जो एनडीपी के जो हैं यहां से चोजन कैंडिडेट वो है म्यूनिसिपल काउंसलर क्रेग सॉफ। ब्लॉक क्यूबेकवा ने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया है। मैनिटोबा जो है वहां पे एनडीपी जो है वो सोचती है कि ये जो एल्मवुड ट्रांसकोना का एरिया है, यहां से थ्री टर्म एमपी डेविड डेनियल ब्लेकी जो है, उन्होंने जब रिजाइन किया था तो वो अपने पास ही रखना चाहते हैं। उन्होंने जो है यहां से नॉमिनेट किया है कॉलिन रेनॉल्ड्स को, और लिबरल्स ने यहां से किया है आयन मैकेंटायर को, और जो नहीं सॉरी जो एनडीपी है उन्होंने नॉमिनेट किया है ट्रांसकोना को, कंजर्वेटिव पार्टी ने किया है कॉलिन रेनॉल्ड्स को, और लिबरल पार्टी ने इन मैकेंटायर को यहां से किया है। और जो है अब जाहिर है कि लिबरल पार्टी चाहती है कि ये दोनों बाय इलेक्शन जो है जीते, क्योंकि आपको पता ही है कि जो ट्रोनो का हुआ था, ट्रोनो सेंट पॉल्स का, वहां से ये हार गए थे। ऑन्टेरियो ने आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है, जो उन्होंने कहा है कि ओवर 100 मिलियन हम स्पेंड कर रहे हैं टू परचेज 5 न्यू हेलीकॉप्टर्स फॉर पुलिस सर्विसेज इन जीटीए एंड ऑटावा, क्योंकि वो कहते हैं जी क्राइम्स बेतहाशा बढ़ गए हैं, ऑटो थेफ्ट, कार जैकिंग्स एंड स्ट्रीट रेसिंग। और अपने बजट के अंदर इन्होंने कहा था कि हम 4 न्यू जो हेलीकॉप्टर्स हैं पुलिस के लिए वो लेंगे। ये स्पेंड कर रही है ऑन्टेरियो अब 134 मिलियन टू बाय ऑल 5, 36 मिलियन से ज्यादा जो है वो बजट के अंदर रखी गई थी जो कॉस्ट थी। प्रीमियर फोर्ड ने आज इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि 4 हेलीकॉप्टर्स जो हैं हम लीज पे ले सकते थे, लेकिन हमने ऑप्ट किया है टू बाय, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज एक न्यूज कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे थे मिसिसागा में, और उन्होंने कहा जी कि ये ग्रेट इन्वेस्टमेंट है टू स्टॉप क्राइम, अवॉइड हाई स्पीड कार चेजेस एंड डेथ्स, और पुलिस के पास तमाम टूल्स होने चाहिए चोरों को पकड़ने के लिए या जो कि क्रिमिनल्स हैं उनको पकड़ने के लिए। उन्होंने कहा जी कि दुनिया के तमाम बड़े शहरों में इंक्लूडिंग यूएस जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पुलिस यूज करती है, क्योंकि ग्राउंड पे इतना भागा नहीं जा सकता और फास्टर तरीके से उनको पकड़ा नहीं जा सकता है क्रिमिनल्स को। ओपीपी जो है वो बाय करेगी 2 new H-135 हेलीकॉप्टर्स, और 3 जो है वो परचेज किए जाएंगे डरहम, हॉल्टन और पील के लिए। और वो कहते हैं जी कि ये इलाके जो हैं इंडिपेंडेंटली ओन एंड ऑपरेट करेंगे इनको, लेकिन हम जो है पुलिस के हवाले कर देंगे, फिर वो जो है इसको अपने यूज में कैसे लाएंगे उसके ऊपर वो काम करेंगे। अब जो आपको पता ही है कि टीटीसी के भी बहुत सारे मसले चल रहे थे, बहुत सारी स्ट्राइक्स चल रही थी ना कनाडा में, तो आज जो टीटीसी है उसके भी आज जो कुछ मसले हल हुए हैं, लेकिन इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब इसको जो सिटी ऑफ टोरंटो है तकरीबन 176 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स जो है इसको इसके ऊपर जो है उसको पैसे लगाने पड़ेंगे। टीटीसी के जो चेयर हैं जमाल मायर्स, उन्होंने कहा जी कि 12,000 जो वर्कर्स थे इन एटीयू लोकल 113 इंक्लूडिंग सबवे, बस ऑपरेटर्स, कलेक्टर्स, मेंटेनेंस वर्कर्स जो हैं उनकी जो पे है उसको हाइक किया गया है 13.04% से बिटवीन 2024-26 में, और ये जो है इंक्रीजेस जो हैं ईच ईयर में जो ये शो कर रहे हैं 2024-25 और 2026 में ऐसे शो करेंगे, जैसे पहले 4% थी, फिर 4.25, फिर 4.79। तो इस तरह से ये डील जो है ये कोर्ट में गई थी लास्ट ईयर, और फिर इनको कहा गया था जी कि ये इसके अंदर एक जो लेजिस्लेशन है उसको ओवरटर्न करना पड़ेगा जो कि 2011 में प्रीवियस लिबरल गवर्नमेंट जो थी वो लेकर आई थी। हालांकि जो काउंसलर स्टीफन हॉलिडे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर एतराज किया, उन्होंने कहा जी कि ये लेजिस्लेशन चेंज नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि टीटीसी के वर्कर्स कह रहे थे कि अब हम बिल्कुल वॉक ऑफ करेंगे जॉब से, हालांकि इसकी अब प्रोविजन नहीं थी, लेकिन फिर भी तो काम नहीं करेंगे, کیونکہ کہا گیا تھا کہ یہ اسینشل چونکہ سروس ہے تو وہ واک آف نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ کام تو نہیں ہو رہا تھا. تو اب یہ ان کے بیچ میں جو سیٹلمنٹ ہوا ہے لیبر سیٹلمنٹ, وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ہے, اور دوسرے جو اس طرح کے سیٹلمنٹس ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوئے ہیں. بیروت ایئرپورٹ جو ہے جی, اس نے آج بے شمار اناؤنس کیا کہ جو فلائٹس ہیں وہ کینسل ہوئی ہیں. اس کے اندر لیبنان کا جو میا ایئر لائنز تھی اس نے بھی کافی زیادہ جو ہیں ڈسٹرپشن دیکھی ہیں, لوگوں کو کافی پرابلمز دے, کیونکہ اب لیبنان اور اسرائیل یعنی کہ حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں ٹینشنز جو ہیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. لفتھینزا جو ہے اس نے اپنے جو پانچ روٹ تھے ٹو اینڈ فرام بیروت اس کو کینسل کیا ہے. اس گروپ کے جو کریئر تھے سوئس انٹرنیشنل ایئر لائنز اینڈ ایرو ونگز, ٹرکش ایئر لائنز, ترکی بیسڈ کریئر سن ایکسپریس اور اے جیٹ, یہ سب جو تھی یہ بھی کینسل تھی. اس کے علاوہ گریک جو کریئر ہے, ایجین ایئر لائنز, ایتھیوپین ایئر, ان سب نے بھی اپنی جو فلائٹس تھی کینسل کی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بے شمار جو گلف کنٹریز سے ایئر لائنز اور فلائٹس تھیں وہ بھی کینسل رہی. لوگوں کو اس میں کافی پرابلم چلا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویکینڈ کے اوپر ایک راکٹ اٹیک جو ہے الیجلی کہتا ہے اسرائیل کے حزب اللہ نے کیا ہے, جس میں کہ اسرائیل کے اندر 12 لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں, اور ایریا تھا یہ گولان ہائٹس کا. اسرائیل کی جو سیکیورٹی کیبنٹ تھی پھر اس نے آج جو ہے میٹنگ کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا اس کا ہم رسپانس دیں گے. انہوں نے کہا جی کہ یہ حزب اللہ نے کیا ہے, حالانکہ حزب اللہ نے بالکل ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ اٹیک انہوں نے اسرائیل کے اوپر نہیں کیا. تو اس کے بیچ میں اب جو ہے ٹینشنز بہت زیادہ ریجن کے اندر بڑھ گئی ہیں. العربیہ کی اس سلسلے میں ایک خبر آئی ہے, اور اس کے مطابق پینٹاگون کے جو چیف ہیں لوئڈ آسٹن صاحب, انہوں نے اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹس جو ہیں ان سے اب بات کی ہے جب یہ لیبنان کے ساتھ لڑائیاں زیادہ شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ جو یو ایس آفیشلز ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر, انہوں نے ذرا اس کو ڈاؤن پلے کیا. اس نے کہا کہ نہیں, اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں لڑائی نہیں ہو سکتی ہے, لیکن یہ ان کلیئر ہے کہ اس میں آنے والے دنوں میں کیا ہوئے گا, یا کہ اگر اسرائیل رسپانس دے گا تو وہ کیا دے گا. یو ایس ملٹری فورسز جو ہیں البتہ انہوں نے کہا جی کہ ہم بالکل تیار ہیں کہ اگر حزب اللہ نے عراق اور سیریا کے اندر یو ایس ملٹری جو آپریشنز ہیں ان کے اوپر اٹیکس کیے تو ہم اس کو کیسے فیس کریں گے یا روکیں گے. اسرائیلی اٹیکس جو ہیں وہ بیسیکلی سویلین سائٹس کے اوپر ہوتے رہے ہیں بیروت کے اندر, جس کی وجہ سے حزب اللہ کافی ناراض تھا اور اس میں کافی ہائی کیجولٹی ریٹس آتے رہے ہیں. تو جب یہ اٹیک ہوا سیٹرڈے کو اسرائیل کے اندر تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ حزب اللہ نے کیا ہے, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس نے نہ کیا. یو ایس بلیو کرتا ہے کہ جی ڈپلومیٹک طریقے سے یہ جو ٹینشنز بلو لائن کے ساتھ چل رہی ہیں, یعنی کہ اسرائیل اور لیبنان کے ساتھ چل رہی ہیں, اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. لوئڈ آسٹن نے آج اسرائیلی پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بالکل لیبنان اور اسرائیل کے بارڈر پہ جو لڑائی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور دونوں سائڈ کے سٹیزنز جو ان کو اجازت دینی چاہیے اپنے گھر پہ آئیں. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اسپوکس پرسن ہیں جان کربی, انہوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں نہیں یہ سارا کچھ ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے, اسرائیل اور لیبنان کے بیچ میں کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی. ہاں یہ اٹیک بڑا ہوریفک تھا, لیکن ہمیں نہیں لگتا کہ یہ اس میں کوئی ایسکلیشن آئے گی. پائی جان کب سے تو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے سدرن لیبنان پہ, اب اور ایسکلیشن کیا آئے گی. تو یہ جناب مڈل ایسٹ کے اندر سارا کچھ چل رہا ہے. اور جناب بھیڑے ہوئے ہیں کمالا ہیرس اور ٹرمپ صاحب بھی, اور ان کے بیچ میں بھی کافی لڑ آئی اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں بیانات چل رہے ہیں. کمالا ہیرس جو ہیں وہ اب چونکہ ان کو پتا ہے کہ ہولے ہولے وہ اب جا رہی ہیں نومبر کی طرف جب الیکشنز ہونے والے ہیں, تو آج انہوں نے بالکل ہی جو ہے یو ٹرن لے لیا, اور انہوں نے کہا ہاں ہاں مجھے بالکل پتا ہے پیلسٹائن کے اندر لوگوں کے ساتھ بڑی سفرنگ ہو رہی ہے, اور یہ غزہ میں جو اسرائیل کی وار ہو رہی ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور جو ہے یہ انہوں نے ملاقات بھی جو کی تھی اسرائیلی پرائم منسٹر جو ابھی نتن یاہو صاحب امریکہ آئے ہوئے تھے اس میں بھی, تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کو جو ہے یہ اس وار کو روکنے کی ضرورت ہے, لیکن انہوں نے اسرائیل کو اور نتن یاہو صاحب کو پورا جو ہے وہ حوصلہ دکھایا تھا کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے. تو اب جو امریکہ میں ایکٹیوسٹ ہیں وہ بڑے بھڑک گئے ہیں کمالا ہیرس پہ, وہ کہتے ہیں جی اس کی بالکل ایک کلیئر لائن ہونی چاہیے, ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے پیلسٹینینز کے جو ہے وہ سارے دکھ درد کا پتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے کانسٹنٹلی یہ کہہ رہے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن جس کا کہ یہ حصہ بھی ہیں اس وقت, اور بات کے لیے بھی یہ پلیج کر رہی ہیں کہ یہ ویپنز اور منی جو ہے وہ دیتے رہیں گے اسرائیل کو, تو اس سے تو جو لوگوں کی کلنگز ہیں پیلسٹائن کے اندر وہ کنٹینیو رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے بھی ہیرس صاحبہ کے اوپر کافی اعتراض کیے, انہوں نے تو خیر بہت ہی گندے الفاظ کیے, انہوں نے کہا شیز اے بم, یعنی کہ بڑا ہی سلی قسم کی بندی ہیں, اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ان کی جو تھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بہت ہی کیوٹک بارڈر پالیسی تھی جس کا یہ حصہ تھی. لیکن جو ابھی ریسنٹ پولز آئے ہیں امریکہ میں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ دونوں بہت ہی کلوز چل رہے ہیں, ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, خاص طور پہ جو ان کی سوئنگ سٹیٹس ہوتی ہیں. تو उनमें भी बहुत क्लोजली ये चल रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रंप साहब ने आज ये भी एग्री किया है, इनको एफबीआई बहुत अरसे से बुला रहा था कि भई आप आए, आपके ऊपर ये जो अटेम्प्टेड असैसिनेशन हुई है तो आप आके इसके ऊपर कुछ अपना बयान दें। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, मैं विक्टिम इंटरव्यू जो है वो दूंगा एफबीआई को। तो आज उन्होंने जो है इसकी हामी भरी है। फ्रांस के तो जनाब अंदर कुछ अजीबो गरीब ही काम चल रहे हैं। फ्रांस के अंदर एक तो ये हुआ है कि ये जो सेबोटाज की गई थी SNCF रेल नेटवर्क, उसके अंदर अब कुछ क्लूज मिले हैं जिसके ऊपर बात करते हुए फ्रांस के इंटीरियर मिनिस्टर जेरल डर्मेनियन ने कहा है कि ये जो हुआ था, ये जो सेबोटाज किया गया था रेल नेटवर्क को, ये हमें लगता है कि एलिजली फार लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने किया बिफोर द ओपनिंग ऑफ ओलंपिक गेम्स। उन्होंने कहा जी कि हमने कुछ आइडेंटिफाई किया है लोगों को और हमें लगता है कि ये डिलिबरेटली किया गया था और प्रिसाइसली और बड़े एक्सट्रीमली वेल टारगेटेड था, जो कई तरीकाकार जो है एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जो होते हैं उनका है और वो ये सारी की सारी चीज को सेबोटाज करना चाहते थे। इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट जो थी वो भी मीडिया को भेजी गई थी जिसमें कहा गया था जी कि ओलंपिक गेम्स जो इस मुल्क में हो रहे हैं उसको ना कराया जाए। इस सिलसिले में आज फ्रांस ने एक आदमी को पकड़ा भी है एट किसल, उसका नाम नहीं बताया है, लेकिन उसके पास जो था एक्सेस टू SNCF, ये जो टेक्निकल प्रेमिसेस थी उसके थे, टूल्स थे, सारा उसके पास नक्शे थे। तो वो कहते हैं जी कि ये अलेजली इसका ताल्लुक जो है वो अल्ट्रा लेफ्ट के साथ है। इसके साथ साथ फ्रांस में आज एक और बहुत ही अजीब वाकया हुआ। आपको पता ही है कि फ्रांस वाले मुसलमानों के खिलाफ बड़े प्लान्स बनाते हैं और लेजिस्लेशंस बनाते हैं, जी हिजाब नहीं पहनना और जो है वो फेस कवर नहीं करना। और जिस वक्त कतर के अंदर फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा था तो बड़ा एतराज इन्होंने किया था, ओ हो बड़े ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं इन्होंने भी और बाकी यूरोपियंस ने भी, कि कतर में तो बिल्कुल ये फीफा नहीं होना चाहिए था, बड़ा खराब कंट्री है। उसके बाद फीफा ने कहा जितने जबरदस्त जो हैं वो फीफा की गेम्स कतर में हुई हैं आज तक कभी किसी मुल्क में हुई नहीं है। अपने मुल्क का हाल देखें, राइट इन द हार्ट ऑफ यूरोप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो है फ्रांस, फ्रांस के अंदर क्या हुआ है। कतारी प्रिंसेस जो है, जो कि बहन है कतारी अमीर की तमीम बिन हमद अल थानी की, ये जो है प्रिंसेस अल मायसा बिन हमद अल थानी TGV ट्रेन लेके नीस से पेरिस जा रही थी जबकि उनका सारे का सारा सामान वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, नॉट जस्ट वन मिलियन, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनका सामान सारे का सारा चोरी हो गया। इसके अंदर इनके 11 अहमद के बैग से, जो कि इनकी ज्वेलरी से और दूसरे वैल्यूएबल्स जो हैं उनसे भरे हुए थे। शी इज अ वेरी वेरी वेल नोन पर्सन प्रिंसेस जो है ये अल्थानी की जो बहन है अल मायसा, ये जो है शी इज द चेयरपर्सन ऑफ कतर म्यूजियम्स एंड दोहा फिल्म इंस्टीट्यूट एंड शी इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ आर्ट वर्ल्ड, एक्सट्रीमली फेमस पर्सनैलिटी। तो ये TGV से कैन स्टेशन से जा रही थी जो है वो नीस से जो चलती है पेरिस की तरफ, तो गार्ड डे लियोन के तरफ, तो वहां पे रास्ते में इनका सारा सामान जो है चोरी हुआ। ये उस वक्त हुआ जब कतारी अमीर खुद आए हुए हैं फ्रांस के अंदर ओलंपिक्स को देखने के लिए और ये जा रही थी अपनी कतारी जो टीम थी उसको चीयर करने के लिए। इनके जो बैग्स हैं उसके अंदर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव वॉचेस वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड डायमंड ज्वेलरी वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स थी जो चोरी हुई, जिसको फौरन रिपोर्ट किया गया। तो ट्रेन जो थी उसको टूलों स्टेशन के ऊपर रोका गया और 20 मिनट तक जो है वो सारी वहां पे वो देखा गया, चेकिंग की, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं मिला है, ना तो चोर पकड़े गए हैं ना तो ये इनकी ज्वेलरी और वॉचेस जो हैं और या कई जो एक्मेस के बैग्स हैं ये पकड़े गए हैं। तो ये जनाब हो रहा है। और इसके अलावा भी जो पेरिस से न्यूज आ रही है, लोग जो वहां पे जा रहे हैं उन्होंने कहा जी कि हमने बड़ा जबरदस्त वो कंक्रीट जो यूज की है उसमें आपको पखे लगाने की जरूरत नहीं है, इतनी शदीद गर्मी है कि लोगों को खरीदने पड़ रहे हैं अपने खुद के जो हैं वो पखे और वहां पे जो है वो लगाने पड़ रहे हैं। तो ये जनाब पेरिस के अंदर इंतजाम है, लेकिन आप देख लेना एंड में क्या तारीफें होंगी पेरिस की, क्या तीर मारा जी पेरिस ने और क्या कमाल किए। और ये वो ब्रिटेन के अंदर भी जनाब आज बहुत ही ज्यादा अफसोस का वाकया था, क्योंकि ब्रिटेन की जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं उन्होंने वैसे तो एक आदमी को आज पकड़ लिया है, लेकिन उसने अटैक किया था जिसमें कि उसने दो बच्चों को छुरियां मार के मार दिया है और 9 दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा जो है गंभीर अंदाज में इंजर किया है इन साउथ पोर्ट नॉर्थ वेस्टर्न यूके के अंदर। यहां तक ये इतनी इमरजेंसी यहां पर हो गई है कि आडलर हेड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल जो है उसने कहा जी कि हमारे पास इतने लोग अब हॉस्पिटल के अंदर आ गए हैं कि हम इसको एक मेजर इंसिडेंट या कि इसको कोड रेड जो है वो हम इसको कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर केयर स्टॉर्मर जो है उन्होंने बड़ा शॉक का इसके ऊपर इजहार किया है। नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न एम्बुलेंस सर्विस जो है उसने कहा जी कि हमने भी ट्रीट किए हैं 8 लोगों को स्टैब इंजरीज के लिए जो कि ठीक नहीं है, और बाकी के लोग जो है उनको 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भेजा गया है। मायरसाइड पुलिस स्टेशन जो है उसने, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि उसने एक आदमी को अरेस्ट किया है नाइफ के साथ, लेकिन पुलिस ने कहा कि बाकी लोगों को यहां पर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पब्लिक को कोई भी थ्रेट नहीं है। लेकिन अब जो है ये ऐसे लोग छुरियां ले लेके फिर रहे हैं और मार रहे हैं, 2 बच्चों को उसने मार दिया, तो पब्लिक को हेल्थ को थ्रेट कैसे नहीं है भाई, थ्रेट तो है। तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं जी तैयब अर्दोगान साहब, उन्होंने आज थ्रेटन किया है इसराइल को और उसने कहा जी कि ये जो कुछ तुम गाजा के अंदर कर रहे हो तो हम जो हैं कभी भी मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। तुर्की ने इससे पहले भी जो है मिलिट्री इन्वेंशन की हैं इन द पास्ट इन अदर कंट्रीज और इसराइल जो है कोई एक्सेप्शन नहीं है। इसराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसराइल कैंट्स, उन्होंने एक्स के ऊपर कहा है जी कि ये जो है तुर्की का प्रेसिडेंट अर्दोगान ये बिल्कुल फॉर्मर इराकी डिक्टेटर सदाम हुसैन के नक्शे कदम पे चल रहा है, लेकिन ये भूल गया है अर्दोगान के सदाम हुसैन का क्या हशर किया गया था। जाहिर है कि ये सदाम हुसैन का जो 2003 कैप्चर था बाय यूएस फोर्सेस उसकी बात कर रहा था, इंटीग्रिट और फिर बाद में उसको जो है मार दिया गया था, तो वो इनको डराने की कोशिश कर रहा था अर्दोगान को कि तुम्हारा भी यही हशर होएगा। तुर्की की जो फिर फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने जो है फिर उसका बड़ा बुरा मनाया, उसने नतन्याहू को एडोल्फ हिटलर कहा और उन्होंने कहा जी कि फिर आप भी ये भूल गए हैं कि जो जीनोसाइडल हिटलर था वो कैसे मरा, वैसे ही जीनोसाइडल नतन्याहू का भी एंड होएगा। जीनोसाइडल नाट्सीज जो थे उनको अकाउंटेबल ठहराया गया था, तुमको भी अकाउंटेबल ठहराया जाएगा क्योंकि तुमने पैलेस्टीनियंस को बर्बाद किया है। दुनिया जो है वो पैलेस्टीनियंस के साथ और ह्यूमैनिटी के साथ खड़ी रहेगी और वो उनको बर्बाद नहीं होने देगी। तो काफी वॉर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये इसराइल और तुर्की के बीच में भी अब शुरू हो गए हैं। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स जो कि फैमिलीज और किड्स को ऑफर कर रहे हैं AA कंसल्टेंट्स इंक के शावेज खान साहब। वो कह रहे हैं जी कि अगर आपका कोई भी बच्चा 12 साल से कम है और आप सिंगल पेरेंट हैं तो आपको 60,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आपको गवर्नमेंट का ग्रांट मिल सकता है। तो आपको अगर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनसे चाहिए तो आप इनको कॉल कर लें 6477690241 पे। एंड जनाब, ऑन्टेरियोज लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज टेस्ट जो है उसके भी अब 2 लोकेशंस है, एक तो है मिसिसागा में 4141 डिक्सी रोड पे और इसका नंबर है 9052323663 और इसके अलावा एक ओकफिल में अब इनका नया जो रेस्टोरेंट है उसका नंबर है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट। तो अगर आपको वहां पे कॉल करना है तो आप कॉल कर लें 9052262294 के ऊपर। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर तो इमरान खान साहब और उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनका जी और ज्यादा रिमांड मांगा गया है अब तोशा कहा केस के अंदर। पहले तो उनको 7 डेज के लिए किया था, अब उनको 10 डेज के लिए और जो है मांगा गया है। इनके जो डिफेंस लॉयर थे सलमान सफदर, उन्होंने इसको एक्सटेंशन को अपोज किया और खान साहब ने भी बड़े गुस्से में कहा कि तोशा खाना के साथ मेरी बीवी का कोई भी जो है ताल्लुक नहीं है, उसको क्यों ड्रैग इसके अंदर किया जा रहा है। नैब के ऑफिशियल्स के बारे में उन्होंने कहा जी कि वो तो बिल्कुल ही बिके हुए हैं और पैसा लेके जो है वो कुछ भी करते हैं। नैब के जो लॉयर थे अब्बासी साहब इसके ऊपर भड़क गए, तो उन्होंने कहा जी कि इसमें पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, केस के ऊपर बात करें। उन्होंने चैलेंज किया इमरान खान साहब को कि ये जो आपने डिनर और टी सेट जो है 30,000 रुपीज पाकिस्तानी से लिया है, क्या रावलपिंडी के राजा बाजार में भी आपको क्या इतना सस्ता डिनर और टी सेट जो है वो मिल सकता है? तो आप क्या समझते हैं दुनिया इतनी बेवकूफ है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने आपको 30,000 रुपीज ओनली का जो है वो गिफ्ट दिया था? तो आप इसका जरा थोड़ा सा जवाब दें। तो कोर्ट में जब ये गर्मा गर्मी हुई तो कोर्ट ने फिर ब्रेक ली, ब्रेक के बाद जब आए तो इमरान खान साहब ने अब्बासी साहब से अपोलोजाइज किया और उसके बाद जो है उन्होंने अपोलोजी एक्सेप्ट की और फिर जो है वो हियरिंग चली। तो अब जो है ये तोशा खाना के स्यापे जो हैं ये बिल्कुल खत्म नहीं हो रहे हैं। आज पीटीआई के लिए राहत की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज डिक्लेयर किया है कि 93 जो एमपीज हैं, एमपीएस जो हैं वो पीटीआई के मेंबर्स हैं अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट जुलाई 12th ऑर्डर ऑन रिजर्व सीट केसेस। इससे पहले भी ईसीपी ने डिक्लेयर किया था कि 39 पीटीआई के जो लॉ मेकर्स फ्रॉम नेशनल असेंबली हैं वो अब जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं एंड दे आर अफिलिएटेड विद पीटीआई। ईसीपी ने ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी हैं। इसमें से जो 29 मेंबर्स हैं वो पंजाब असेंबली से हैं, 59 जो हैं वो केपी से हैं और 6 जो हैं वो सिंध से हैं। तो ऐसे है जनाब ये सारा कुछ चल रहा है। तो एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब को टाइट करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी पार्टी को थोड़ी थोड़ी ढील देते जा रहे हैं ये बताने के लिए कि हमारी जुडिशरी आजाद है, और फिर लोगों को बड़ा जो है ये खींचते हैं कि फलाने ने ये कहा और फलाने ने ये बयान दिया, ये जुडिशरी के बारे में कोई बात कर रहा है मिलिट्री के, यानी कि ये जुडिशरी और मिलिट्री जो है ये लॉ से ऊपर है, ये सब लोग इनके बारे में आप बात नहीं कर सकते, सीक्रेट काउज है ये। मुल्क के अंदर जो भी कोई अदारा गलत काम करता है उसके ऊपर बात करना, उसके सुधार की तरफ लेके जाना जो है वो काम होता है उन लोगों का जो कि इन चीजों के ऊपर नजर रखे हुए होते हैं। तो हर किसी को आप एंटी नेशनल, एंटी पाकिस्तान, एंटी मिलिट्री, एंटी सीजेपी, एंटी सीजेपी कहते रहेंगे तो फिर मतलब है आप डिक्लेयर ही कर दो कि भाई हम चला रहे हैं मार्शल लॉ चला रहे हैं, क्योंकि मर्जी तो हमारी चलेगी, सिविलियन गवर्नमेंट की तो हमने ऐसी तैसी की हुई है। वैसे भी जिस तरह का बंदा लाए हुए हैं, सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कुकू कोड़ा जो है वो लाए हुए हैं आप शहबाज शरीफ साहब, वो तो आपका यस मैन है, वो तो आपको कहेगा यस 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 जो आप उसको कहेंगे। तो अब आप चला तो गवर्नमेंट आप रहे हैं, तो फिर सिविलियन गवर्नमेंट का क्या है वहां पे, आप कह दो कि भाई नहीं मिलिट्री चलाएगी सारा कुछ, एटलीस्ट लोगों को क्लैरिटी तो आएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है जी आज उसने इंटरेस्ट रेट्स कट किए हैं फ्रॉम 20.5% टू 19.5%, और ये सेकेंड कंजेकटिव रिडक्शन आई है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इन्फ्लेशन और मार्केट एक्सपेक्टेशन जो है वो ईज होती जा रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद एसबीपी के जो गवर्नर हैं जमील अहमद साहब, उन्होंने कहा जी कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है और 12.6% पे आ गई है फ्रॉम 38%, और इंटरनल अकाउंट जो है वो भी इम्प्रूव किया है, इसकी वजह से हम बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट जो है उसको हमने लास्ट मंथ भी ट्रिम किया था फ्रॉम 150 बेसिस पॉइंट्स टू 20.5% फ्रॉम रिकॉर्ड हाई 22% जो कि लास्ट ईयर था। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि जो इन्फ्लेशन रेट है ये भी स्टेबलाइज हो गया है बिटवीन 23% से। एसबीसी के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी जो है उसमें भी बेहतरी आई है, ये आईएमएफ के साथ मीटिंग और जो रीपेमेंट्स आई हैं डेट्स की उसके ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि वो जो है अबाउट 7 बिलियन पे के पास है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि अकाउंट डेफिसिट जो है वो भी फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए काफी नीचे आ गया है, और फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो इंक्रीज किए हैं बाय 4.4 बिलियन इन जून 2023 टू एंड बाय 9 बिलियन जो है वो इसमें। तो ये सारी आज जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिटेल्स दी हैं। बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर हैं सरफराज बुगटी साहब, वो कह रहे हैं जी कि वन साइडेड जो ये नेगेटिव प्रोपागेंडा किया जा रहा है, ये जो सिट इन चल रहा है गवादर के ऊपर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और उन्होंने इन्वाइट किया है डॉक्टर मेहरंग बलोच को और बलोच यकजहती कमेटी को फॉर टॉक्स। उन्होंने कहा जी कि ये जो 16 एफसी के पर्सनल जो थे उनको वो इंजर हुए थे गवादर के इस वायलेंस में, एक जो है उसकी तो आंख जो है वो भी चली गई है, तो स्टेट जो है वो किसी को स्टेट को हॉस्टेज बनाने की इजाजत नहीं दे सकती है, और हमको पीस लाना पड़ेगा बलूचिस्तान में, उसके लिए मैं सबको कह रहा हूं कि आओ हमसे बात करो। उन्होंने कहा जी बलूचिस्तान असेंबली के अंदर आज बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि गवादर के इंसिडेंट्स को दे आर ब्लोइंग आउट ऑफ द प्रोपोर्शन, इंडिया और यूके जो है खासतौर पर इस इशू के ऊपर बहुत बात कर रहा है, लेकिन यहां पे एक मॉब वायलेंस हुई थी जिन्होंने अटैक किया था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, गवर्नमेंट का काम है अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना और हम आम लोगों को ये जो मॉबस्टर्स हैं उनकी मर्सी के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो है इस तरह की अब जो सिक्योरिटी एजेंसी के लोग मरे हैं उनके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, बस हर वक्त मिसिंग लोगों की बात करते हैं, तो एक तरफ की स्टोरी जो है उसको बयान करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा जी ये वो शैतान लोग हैं जो कि बलूचिस्तान का जो पीस है उसको खत्म करना चाहते हैं, और हम बिल्कुल मॉब्स को इजाजत नहीं दे सकते कि वो असेंबलीज या गवर्नमेंट जो है उसको रन करें, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक कॉन्स्पिरेसी है जिसको रुकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो है इसहाक डार साहब, उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान कमिटेड है टू वर्क विद द कॉमनवेल्थ टू प्रमोट कनेक्टिविटी, एजुकेशन, यूथ, वुमेन एम्पावरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। आज एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे विद कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल पेट्रिशिया स्कॉटलैंड के साथ, और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान ने जो है बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हैं टू मीट द चैलेंजेस ऑफ 21st सेंचुरी और अपना रोल जो है ये कॉमनवेल्थ के अंदर प्ले करता रहेगा. उन्होंने अप्रिशिएट किया पेट्रिशिया जी को फॉर हर 5-day विजिट जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे जो हैं इनिशिएटिव्स लिए और उन्होंने कहा जी कि हमेशा उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लड्स. डार साहब ने कहा कि हम कॉमनवेल्थ के अंदर अपना रोल निभाते रहेंगे लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कॉमनवेल्थ भी अपना रोल निभाए ये जो रीजन के अंदर जो है डिस्प्यूट्स हैं इनको हल करने के लिए. जमात इस्लामी के चीफ जो है जी हाफिज नईमुर रहमान साहब उन्होंने कहा जी कि हमारा जो प्रोटेस्ट है अगेंस्ट इन्फ्लेशन वो रावलपिंडी के लियाकत बाग चौक के ऊपर कंटिन्यू रहेगा और गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो हमारी डिमांड्स ना माने. उन्होंने कहा जी कि अथॉरिटीज जो हैं वो अगर फर्दर डिले करेंगी तो सारी चीज को और खराब करेंगी और अगर इन्होंने खराब करने की कोशिश की तो फिर ना सिर्फ रावलपिंडी बल्कि नेशन वाइड जो है हम कॉल देंगे फॉर स्ट्राइक्स अगेंस्ट हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. यहां पे इन्होंने औरतों की एक रैली से भी एड्रेस किया और उन्होंने कहा जी कि डी चौक के ऊपर जो है वो रेडी हैं औरतें मूव करने के लिए. ये जो बहुत ज्यादा टैक्सेस हाई कर दिए और पेट्रोल लेवीज बढ़ा दिए और इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्सेस किए हैं इसको गवर्नमेंट फौरन वापस ले. हम जो हैं लॉज के खिलाफ नहीं काम करते हैं हम पॉलिसीज के अगेंस्ट काम करते हैं. हां बिल्कुल हम इस्लाम की टीचिंग्स को फॉलो करते हैं लेकिन हम ओप्रेसिव लॉज जो हैं उनको रिजेक्ट करते हैं. इफ सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह तो इसलिए हम टायरेंट से जो हैं उनसे हम डरते नहीं हैं और अल्लाह से डरने वाला और किसी से नहीं डरता है क्योंकि अल्लाह जो है उससे हमको डरना चाहिए. उसके पास ग्रेटेस्ट पावर है यूएस के पास ग्रेटर पावर नहीं है. सही है भाईजान बिल्कुल ठीक है. यूएस की कोई चीज आपने यूज नहीं. खबरदार आपके हाथ में मुझे आईफोन नजर आया या आपने फेसबुक यूज किया. समझ आइए ये सारे यूएस के चीजें हैं आप बिल्कुल नहीं यूज कर सकते. आपका दुश्मन है यूएस. सही है मौलाना साहब ठीक है ठीक है ओके. और आपने बिल्कुल उनकी गाड़ियां नहीं यूज करने हैं और आपने बिल्कुल उनके ये ट्विटर व्टर बिल्कुल नहीं आपने यूज करने हैं. ये सब उन काफरों के हैं. बस आपने बिल्कुल इस्लाम के असूलों पे चलना है सीधा बिल्कुल. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब जो है उन्होंने आज फाइनली जनाब दो जस्टिसेज जो हैं जस्टिस रिटायर तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर मसूद आलम मियां खेल जो हैं उनको एडहॉक बेसिस पे एक साल के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो मुकर्रर किया क्योंकि आपको पता है बेतहाशा केसेस थे पेंडिंग लेकिन फिर भी कोई जजेस जो है वो एडहॉक बेसिस पे आने को तैयार नहीं थे. ये जो थी सेरेमनी दिस वॉज अटेंडेड बाय अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर उस्मान आवान. इसकी मंजूरी जो है पहले प्रेसिडेंट जरदारी ने दी थी इनकी अपॉइंटमेंट की अंडर आर्टिकल 182 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उसके बाद सीजेपी जो है उन्होंने एक लीड किया था जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग जिसके के अंदर 8 मेंबर्स थे जिसमें से के 4 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जस्टिसेज मंसूर अली शाह मुनीब अख्तर अमीनुद्दीन खान याया आफरीदी और रिटायर्ड जज थे जस्टिस मकबूल अहमद मलिक एजीपी जो हैं वो आवान साहब लॉ मिनिस्टर नजीर तारर और पाकिस्तान बार काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव अख्तर हुसैन. मियां खेल साहब जो हैं आपको पता ही हमने आपको बताया था कि उन्होंने रिफ्यूज किया था ये एडहॉक बेसिस पे जॉब लेने के लिए लेकिन अब वो राजी हो गए हैं और अब उन्होंने ये ले लिया है. मीडिया और सोशल मीडिया यानी मीडिया मीन्स प्रेस प्रेस में और सोशल मीडिया के ऊपर ये बड़े दिनों से खबर जो है वो चल रही है कि फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल साहब जो हैं वो रिजाइन कर सकते हैं अपने ओहदे से क्योंकि उनके कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं विद प्लानिंग कमीशन डेप्यूटी चेयरमैन डॉक्टर जहांजेब खान के साथ. तो इकबाल साहब ने कहा वैसे तो मैं रिजाइन अभी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं मुझे फ्री हैंड दिया जाए और बिल्कुल मेरे काम में इंटरफेरेंस ना की जाए. अगर की गई तो मैं बिल्कुल रिजाइन भी कर सकता हूं और कोई भी और दूसरी पोजीशन मैं गवर्नमेंट में ले लूंगा. इसके ऊपर बात करते हुए डॉक्टर जहांजेब ने कहा जी कि नहीं हम सबको यूनिटी के साथ काम करने की जरूरत है और मीडिया को उन्होंने कहा जी कि कोई हमारे बीच में डिफरेंसेस नहीं है ऐसे ही जो है आप ये बातें फैला रहे हैं. हम मुल्क की इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए काम कर रहे हैं और लोगों की हालत अच्छी करने के लिए काम कर रहे हैं तो हम टुगेदर हैं. अब ये कितने टुगेदर हैं ये आने वाले दिनों में पता चलेगा. तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के वाइस अमीर जो हैं पीर जहीरुल इस्लाम हसन शाह साहब उसको आज अरेस्ट किया गया है और इनके बारे में जो एफआईआर लिखाई गई है उसमें लिखा गया है कि इन्होंने जो है वो इंसाइट किया है वायलेंस अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के लिए और ये जो थे छुपे बैठे हुए थे अनकारा के अंदर ओकाड़ा के अंदर बैठे हुए थे और इनके खिलाफ जो एफआईआर है वो लाहौर के किला गुज्जर शाह पुलिस स्टेशन में लिखाई गई थी ऑन बिहाफ ऑफ एसएचओ हमाद हुसैन. जिसमें कि उन्होंने कहा जी कि ये शाह साहब और उनके 1500 जो पार्टी वर्कर्स हैं इन्होंने थ्रेटन किया है कि हम मार देंगे सीजेपी को, और बड़ी भड़काऊ एक स्पीच दी थी आउटसाइड लाहौर प्रेस क्लब अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन मुबारक सानी केस। फेडरल गवर्नमेंट जो है उसने भी कहा है कि ये जो मलिशियस प्रोपेगेंडा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, इसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा और इसके जो लोग ऐसा करेंगे उसके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। और जनाब इंडिया भी हूं साढ़े कोलों सिख रहे हैं जी, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है कि 10 साल के बाद बहुत यानी कि अरसे के बाद हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत अब शक्तिशाली किस्म की ऑपोजिशन आई है। 9 साल तो खूब टका के मजे किए बीजेपी ने, मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने, जो वो कह देते थे वही होता था। अभी क्या हुआ है कि अभी वो पूरी सीटें नहीं आई, अभी उनकी गवर्नमेंट अलायंस में है, तो कांग्रेस एंड अलायंस जो है यानी कि इंडिया अलायंस जो है वो अब जो है अब उनके ऊपर जम के हमले कर रही है। आज ये हुआ है जी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच में फिर लोकसभा के अंदर काफी ज्यादा लड़ाई देखी गई, क्योंकि राहुल गांधी जी जो हैं वो लोकसभा के अंदर यूनियन बजट जो आया है उसके ऊपर बात कर रहे थे, और वो जब जब नाम लेते थे गौतम अदानी और मुकेश अंबानी का उनकी स्पीच रोक दी जाती थी। स्पीकर ओम बिरला साहब जो थे उनको आगे चलने नहीं देते थे, उनको कहते थे आप रुकें आप रुकें आप इधर ही रुकें आप नहीं बात कर सकते हैं। और ये जो है जब बात कर रहे थे तो इन्होंने कहा जी कि ये हलवा बजट है और इसके अंदर जो है सिर्फ जो दो बड़े गौतम अदानी और मुकेश अंबानी हैं इनके लिए सब चीजें हैं। जैसे जैसे वो नाम लेते थे उनको रोका जाता था। उन्होंने कहा जी कि इससे पहले भी जब वो इनके रेफरेंसेस देते थे तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स जो होते थे उसमें से ये सारे इनके रेफरेंसेस निकाल लिए जाते थे। आज गांधी जी ने जब स्पीच शुरू की तो उन्होंने महाभारत का जो है वो रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो थी ये जो अभिमन्यु थे उनको मारा गया था चक्रव्यूह में, अभी 21st सेंचुरी में भी हमारे मुल्क में चक्रव्यूह जो है उसको अपनाया हुआ है, क्योंकि वो जो सिंबल जो वेयर करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अपने सीने के ऊपर वो भी चक्रव्यूह, यानी कि वो बात कर रहे थे वो जो कंवल का फूल जो बीजेपी की पहचान है उसकी बात। उन्होंने कहा जी कि अभिमन्यु जो थे उनको के साथ जो किया गया था, इस वक्त हिंदुस्तान की यूथ विमेन फार्मर्स और जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं उनके खिलाफ किया जा रहा है, लेकिन चक्रव्यूह के अंदर तो हजार लोग थे। इंडिया जो है इस वक्त इज कंट्रोल्ड बाय 6 पीपल ओनली, मोदी, अमित शाह, मोहन भगवत, अजीत डोवाल, गौतम अदानी एंड मुकेश अंबानी। ट्रेजरी बेंचेस जो हैं उन्होंने फिर इसके ऊपर बड़ा एतराज किया। उन्होंने कहा जी कांग्रेस के जो डेप्यूटी लीडर हैं गौरव गोगोई, स्पीकर साहब ने सबसे पहले तो कहा, स्पीकर ओम बिरला साहब ने, कि आपके अपने खुद के जो डेप्यूटी लीडर थे गौरव गोगोई, उन्होंने कहा था कि हम कभी भी जो हाउस का मेंबर नहीं है उसको मेंशन नहीं करेंगे, तो गांधी जी जो हैं उनको भी इन सबके नाम नहीं लेने चाहिए हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे लगा कि ये बजट जो है फार्मर्स, लेबरर्स और एसएमईज के लिए है, क्योंकि मोदी जी हर वक्त मिडिल क्लास को कहते थे कि अपने प्याले तोड़ दो, अपने फोन तोड़ दो, तुम्हारे लिए अच्छाइयां आ रही हैं, लेकिन अच्छाइयां तो कोई नहीं आई बल्कि पॉलिटिकल मोनोपोली जो है वो बनती जा रही है। और हमारे मुल्क में भी क्या कहा आज मोदी जी इन्होंने, राहुल गांधी इन्होंने कहा कि यहां पर भी एक डीप स्टेट आती जा रही है और एजेंसियां आ रही हैं, जैसे कि कभी हम पाकिस्तान में कहते थे, हैं जी। तो इन्होंने कहा जी यहां पे भी डीप स्टेट और एजेंसियां जो हैं वो आ रही हैं, और आप हिंदुस्तान को एक छोटे से बॉक्स में रखना चाहते हो जहां पे गरीब लोग बड़ी ड्रीम्स नहीं दे सकते, सिर्फ अदानी और अंबानी ही। जैसे ही उन्होंने ये कहा उनको फिर रोक दिया गया। यूनियन पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू जो है उन्होंने बेतहाशा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा जी कि आप इनके नाम नहीं ले सकते हैं। उसके ऊपर राहुल गांधी ने कहा चलो ठीक है, अब अदानी और अंबानी को मैं बोलूंगा A1 A1। तो ये सारी पॉलिसियां जो आप हिंदुस्तान में बना रहे हैं A1 A1 के लिए आप बना रहे हैं, और बड़ी हलवा किस्म की जो है वो सेरेमनी आप लोगों ने की है जब आपने बजट को प्रिंट किया है। इसमें कोई भी दलित, आदिवासी, बैकवर्ड क्लास का बंदा नजर नहीं आ रहा है। बस जनाब जब राहुल गांधी जी ने ये कहा तो बीजेपी तो जनाब भड़क गई। बीजेपी ने कहा कांग्रेस कौन होती है हमें ये याद कराने वाली कि हमने दलित और आदिवासी और बैकवर्ड क्लास को जो है वो निग्लेक्ट किया है। तुम्हारी तो खुद की हिस्ट्री, कांग्रेस की हिस्ट्री भरी हुई है कि किस तरह तुमने रिजर्वेशंस इन लोगों के लिए जो है वो हटाए हैं। तुम लोग जो हो इंतहाई एंटी हिंदू हो, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन थे बी एल संतोष, उन्होंने एक्स के ऊपर राजीव गांधी फाउंडेशन के मेंबर्स की पिक्चर डाली जिसके के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका मोहन, मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम थे, और उसमें उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने तो कभी भी इन लोगों की परवाह नहीं की। बीजेपी के आईटी जो डिपार्टमेंट के हेड थे अमित मालविया, उन्होंने कहा जी कि आप लोगों ने कभी भी इन बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम नहीं किया, और उन्होंने भी वही वर्ड्स यूज किए जो कि मोदी जी गांधी जी के लिए यूज करते हैं, बलक बुद्धि राहुल, यानी कि जिसके पास दिमाग वो आग नहीं है, बलक बुद्धि राहुल तुमको अपना खुद का कांग्रेस का हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने तो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर्स को कहा था कि रिजर्वेशंस को अपोज करो, उसके बाद जो है कांग्रेस ने कलकड़ जो कमेटी का रिकमेंडेशन आया था बैकवर्ड कमीशन के ऊपर इन 1957 उसको कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया, मोदी जी ने आके इसको रिवाइव किया और जो बैकवर्ड क्लासेस जो है उनको उनका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया 2018 में। इसके अलावा कांग्रेस ने जो मंडल कमीशन था उसको भी 1983 में कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया था, बीजेपी ने आके उसको इम्प्लीमेंट किया 1990 में। बिटवीन 2004 एंड 2010 कांग्रेस जो है अंडर सोनिया गांधी उसने डिफ्रॉड किया इनको, ट्राई टू डिफ्रॉड लोअर कास्ट इन आंध्र प्रदेश, और जिसमें कि उन्होंने तमाम का तमाम कोटा उठा के मुसलमानों को दे दिया। उसके बाद अगेन 2011 में भी ये सारा कोटा इन्होंने मुसलमानों को दे दिया, और अभी के इलेक्शंस में भी कर्नाटका के अंदर ये तमाम जो लोअर कास्ट का जो है जो लिस्ट है उसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को डाल दिया है। तो तुम लोग एंटी हिंदू हो, मुसलमानों से वोट के लिए तुम ये सब हरकतें करते हो। ले भाई लड़ाइयां तो आसमान को छू रही हैं हिंदुस्तान में भी, वाह क्या बात है जी। तो बस मतलब उन्होंने क्या नेबर्स करो कुछ तो असी सीख ही ली, और तो कुछ नहीं सीख सकते एवे। और जनाब डेजी शाह साहिबा ने आज बहुत बड़े जो हैं वो क्लेम्स किए हैं हमारे सल्लू भाई के बारे में, सलमान खान के साथ आपको पता है उनकी काफी सारी फिल्में आई थी, काफी सारी तो नहीं लेकिन कुछ फिल्में जो आई थी उनमें से एक जय होती जिसमें कि वो उनके ऑपोजिट काम कर रही थी, तो उन्होंने बड़ी तारीफ की सल्लू भाई की, और उन्होंने कहा जी के एक इंटरव्यू वो दे रही थी और डेजी शाह ने कहा जी कि जो सलमान भाई हैं उनकी जो वैनिटी वैन होती है बड़ी सारी और उसका बड़ा ह्यूज किस्म का टेंट होता है और उसके अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं, 10 से 15 चेयर्स होती हैं, और यार दिखा भी दियो डेजी शाह दी तस्वीर, ए तो हूं गुजर गई है खबर, ए हूं खबर गुजर गई जो हूं तुम दिखा रहे हो, ये था कि जब बीजेपी ने हिट किया था गांधी जी को। अच्छा जी हाँ ये अब आप सही पिक्चर दिखा रहे हैं। हाँ जी तो डेजी शाह ने कहा जी कि आप जो हैं सलमान खान के बारे में आपको पता नहीं है कि वो लोगों को कितना ट्रीट करते हैं, जबरदस्त किस्म के उनके दो तरह के टेबल्स होते हैं, बफे लाइक उनका फूड होता है, सब लोग वहीं पे खाना खाने के लिए जाते हैं और ज्यादा उनके पास फ्लैट ब्रेड्स होते हैं, वड़ा पाव होता है, पानी पूरी डोसे होते हैं, तो जो होता है ये बड़ा मजा कराते हैं लोगों को अपने सेट्स के ऊपर। ठीक है जी ये काटेजी शाह साहबर है। इसके अलावा जनाब सल्लू भाई की आज और भी लोगों ने बहुत ज्यादा तारीफ की, उन्होंने कहा कि सलमान खान जो हैं पहले बंदे इंडिया के बन गए हैं जिन्होंने बोन मैरो दिया अपना एक गरीब बच्ची पूजा के लिए, और इन्होंने जो है ये दिया एट मैरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया। इसके ऊपर बात करते हुए डॉक्टर सुनील पारख ने कहा जी कि ये बहुत बड़ी बात है, जब इनको पता चला कि वो जो बच्ची मर रही है पूजा छोटी सी और उसको बोन मैरो चाहिए तो ये एक पूरी की पूरी फुटबॉल टीम को लेकर आ गए थे, लेकिन एन लास्ट मिनट पे ये तमाम की तमाम फुटबॉल टीम भाग गई थी और सिर्फ सलमान और उसके भाई अरबाज रह गए थे, और इन्होंने फिर बोन मैरो दिया था उस बच्ची को बचाने के लिए। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने भी कहा कि जी सलमान खान जो है ये वो आदमी है जो कि सोसाइटी के अंदर चेंज लाना चाहता है, इसीलिए अल्लाह ने इसको बहुत दिया है कि ये बहुत ज्यादा काइंड है, ये गॉड का फेवरेट चाइल्ड है क्योंकि ये गरीबों के लिए काम करता है, इसीलिए गॉड इसका टेक केयर करता है। भाई वाकई कोई बात इसमें मसला नहीं है, यानी कि दो राय नहीं है, शक नहीं है इसमें। और जनाब आज हमारे जो बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड है संजय दत्त, उन्होंने आज अपनी 65th बर्थडे मनाई, तकरीबन 100 फिल्म्स के अंदर काम कर चुके हैं ये इन द लास्ट 30 ईयर्स, और आपको पता ही है कि अपनी मदर जो हैं नरगिस दत्त से बहुत ज्यादा क्लोज थे, लेकिन जाहिर है कि इनके जो वालिद साहब सुनील दत्त साहब थे उनका भी बड़ा इनके साथ प्यार था। अपने जो इनका इंपीरियल हाइट्स का अपार्टमेंट है उसके अंदर अपनी मां की उन्होंने बेशुमार तस्वीरें 50s और 60s के ईरा जो है उसकी लगाई हुई है। ही इज मैरिड नाउ फॉर द सेकेंड टाइम टू मायांता, उसमें से इनके ट्विन्स हैं, एक बेटा है शाहरान और एक बेटी है इकरा, और ये जो है इन्होंने इनको आज बहुत सारे लोगों ने बधाइयां दी। इन्होंने कहा जी कि संजय दत्त साहब और जो फिल्म वाले हैं वो भी बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि ये भी लोगों का बड़ा ख्याल करते हैं इंडस्ट्री में। लेकिन इन्होंने भी अपने चाहने वालों को आज एक गिफ्ट दिया। इन्होंने आज एक अपना पोस्टर रिलीज किया फ्रॉम हिज अपकमिंग फिल्म केडी द डेविल, जिसके के अंदर ये धक देवा का रोल कर रहे हैं और उसके अंदर ये देखे गए हैं पोस्टर में। इन्होंने डेनम जैकेट पहनी हुई है, उसमें बेल्ट जो है इनके जो है ट्राउजर्स में होने के बजाय इनके नेक के ऊपर लटक रही है, कैप पहना हुआ है, शूज बड़े धांसू पहने हैं और सनग्लासेस लिए हुए हैं और उन्होंने कहा जी कि आ रहा है डेविल है जी। तो जो इनके फैंस हैं बड़ा खुश हुए हैं। और जी कुछ सुनूं, पाकिस्तान की अच्छी खबरें सुना दी है। पाकिस्तान की जो माउंटेनियर हैं सुल्ताना बीबी साहिबा, उन्होंने जनाब स्केल किया है फिर से दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन K2 एंड शी हैज बिकम द थर्ड पाकिस्तानी वुमन टू डू सो। इससे पहले समीना बेग और नायला कियानी ने ये जो है 8611 मीटर पीक जो थी जुलाई 2022 में समिट की थी। समीना जो थी शी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी क्लाइंबर टू डू सो। सुल्ताना जो है वो भी अब तीसरी लेडी है जो कि जिन्होंने K2 को सर किया है और इनको लीड कर रहे थे पाकिस्तान के मशहूर माउंटेनियर सिरबाज अली। तो उनके साथ जो है ये वहां पे पहुंचे और उन्होंने अपने मुल्क का झंडा वहां पे लहराया है। पाकिस्तानी शूटर्स जो हैं जी किशमाला तलत और गुलफाम जोसेफ, ये ओलंपिक्स के जो शूटिंग के मुकाबले थे उसके अंदर आगे ये नहीं जा सके हैं। दोनों के ही पॉइंट्स जो थे 571 थे ऑफ 600 इन 10 मीटर एयर पिस्टल कॉम्पिटिशन्स। ये जो है इन्होंने फिनिश किया 32nd ऑफ 44 शूटर्स जोसेफ ने, और दोनों जो हैं अब आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में। अब उसके जो भी